पीना, अब सर जैसा जो वही पर पानी इत्यादि पीना या जूस देना अभी एक घंटे के लिए बंद रखें। यदि परीक्षित महाराज जी के यहाँ उनकी सभा में यदि 7 दिन तक पानी नहीं पिया, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, तो इनसे डिस्टर्ब होता है। इसलिए अभी कष्ट करके इसको बंद रखा जाए, जिसको प्यास लगे वो बाहर जा करके उधर से पानी पी आए, और नहीं तो इधर से देने लेने से कीर्तन का और प्रवचन का महत्व कम जाता है। इसलिए अभी स्टॉप रखिए या उधर में ले जा करके पिलाएंगे। हाँ, देखिए कृष्ण का जन्म हुआ, गोपियाँ बधाई देने के लिए आईं, और कृष्ण को बधाई देते हुए भी कैसे उनको चिढ़ा भी रही हैं और प्यार भी कर रही हैं। कृष्ण का सब समय ही जन्म है, आज भी उनका कहीं न किसी ब्रह्मांड में उनका जरूर जन्म हो रहा है, इसलिए एक बधाई का कीर्तन भाई जरा सुना दो। पाला पड़ गया रामलीला में, रामलीला में सीता जी को घर से बाहर कर दिया, निकल जाओ, रावण के यहाँ तू रही। लक्ष्मण जी को अंत में छोड़ दिया, राम कभी नतमस्तक किसी के सामने नहीं हुए, थोड़ी सी कहीं देखा इधर उधर मर्यादा को भंग करते हुए, बस उसको छोड़ दिया सदा के लिए। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दिन में मरेगा नहीं, रात में नहीं मरेगा, ऐश्वर्य से उसे एक सेकंड के अंदर उसे जमलोक को भेज दिया। कृष्ण द्वारका में आए, सब रानियां उनसे थर थर कांपती थी। पुतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, अभी तक गोपियों का पल्ला नहीं पड़ा था, और जब गोकुल में आए तो पल्ला पड़ा उनका गोपियों से। गोपियां क्या कहती हैं, हमारे पैरों के महावर निकल गए हैं, जरा इसको फिर से लगा दो, थक गई हैं, हमारे पैर दबा दो, संवाहन करो। कृष्ण हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के ब्रज में चलते हैं, गोपियों के समान और कोई भी उनको नाचा नहीं सका, एक इतने छाछ पर उन्होंने नचा दिया। गोपियों से ऐसा पल्ला पड़ा, मक्खन चोरी कर रहे हैं तो जशोदा मैया उनका कान पकड़ कर हाथों को पैरों को बांध दिया और कमर से भी बांध दिया, ये गोपियों से पल्ला पड़ने का है। वह स्वयं भगवान है किंतु प्रेम के द्वारा गोपियां उनको वशीभूत कर लेती हैं और जैसे चाहती हैं वैसे नचा लेती हैं। तो वही गोपियां करें कि अब वो तुम भगवान हैं हम जानते हैं, सुना है या नारद जी से, तुम गोकुल में अब जन्म लिया, अब तो गोपियों से पल्ला देखो पड़ा है, अब देखो चलो। सची पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजवुरीपुरीं माधुरीं गोस्तवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रथिति कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तिते नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्द तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे संनय माम चरणं कृष्ण परम दयालु हैं, करुणा के अहेतुकी सागर हैं। वे कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भी हैं। उनकी इच्छा से मिनटों में सेकंडों में उनके आधिकारिक देवता लोग सेवक लोग विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं। भगवान के बहुत से अवतार बतलाए गए हैं, किंतु सब में शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण ही सबके मूल हैं। कृष्ण में ही जितने भगवत अवतार सब अवस्थित हैं, इसलिए कृष्ण की सेवा करने से, उनका भजन करने से सबका भजन हो जाता है। वही कृष्ण जगत के जीवों पर बिना किसी कारण अहेतुक उनका चित्त द्रवित हो जाने से इस कली काल में आज से 500 वर्ष पहले राधिका जी का मूड भाव और उनकी ऊपर की कांति रंग लेकर महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। मनुष्य की तो बात क्या, भक्तों की तो बात क्या, पशु पक्षी कीट गुल्म लता जितने जंगली जानवर भी हैं सब पर उन्होंने कृपा की वर्षा की। ब्रह्मा इत्यादि के लिए, देवताओं के लिए, नारद के लिए जो प्रेम बहुत दुर्लभ है, उस प्रेम को भी जैसे तैसे जो सामने आए उनको लुटाया। इसे जितनी भगवत्ता के गुण हैं उस सबको समेटे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए थे। जब रूप सनातन जी ने उनके दर्शन किए तो उन लोगों ने मनी मन में संकल्प कर लिया कि हमको अब इस दुखमय संसार में नहीं रहना है, हम इसको छोड़ करके अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा समय अब भगवान के भजन में ही लगाएंगे। विशेष करके अब ये वृंदावन को छोड़ करके और किसी जगह नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां का वातावरण राधामय हुआ है, सब समय रहता है, कृष्णमय वहां का वातावरण। वहां के सुखसारी भी राधे राधे करते हैं, वहां के चौकीदार इत्यादि भी राधे राधे करते हैं, वहां की मिट्टी से, वहां की भूमि से, वहां के पर्वतों से, नदियों से भी राधे राधे की ध्वनि निकलती जाती है। वहां पर यदि भजन करना है तो हमको भी वहीं पर जाना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री और प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ दैट मोहम्मडन किंगडम थे, वो सबको छोड़ दिया, छोड़ करके अपनी धन संपत्ति को का आधा भाग ब्राह्मणों को वितरण कर दिया। ब्राह्मण माने योग्य, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं ऐसे लोगों को, नामधारी और वेशधारी ब्राह्मणों को नहीं। और इसके बाद में जो कुछ रखा उसका एक चौथाई भाई घर के लिए पालन करने के लिए, जीव गोस्वामी बच्चे थे उन लोगों को पालन करने के लिए दिया, और थोड़ा सा जो बच रहा वो सनातन गोस्वामी के मुक्ति के लिए किसी बनिए के पास में रख दिया और वृंदावन में चले। सनातन गोस्वामी भी कुछ दिनों के बाद में किसी प्रकार से जेल खाने से निकले, बड़े कष्ट से वो भी ब्रज की तरफ में चले। उनको पता लगा कि महाप्रभु ब्रज में गए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भाव आविष्ट रहते, कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम हे। कभी तन्मय रहते, कभी कुछ, कभी चलते चलते सिंहों के मुख के ऊपर भी पैर रख देते, सिर पर विषधर सर्पों से भी एकदम प्रमाद उन्मत्त ग्रस्त हैं उनके भी सिर पर पैर रख देते और वे लोग भी कृष्ण कृष्ण कहने लगते। वृंदावन में अधिक दिन रहना उचित नहीं समझा, किस लिए? यदि मैं अधिक दिन रहूंगा तो राधा जी का भाव और कांति जो लेकर के आया हूँ छिप करके इस रूप में ये प्रकट हो जाएगा, सभी लोग जान जाएंगे कि मैं कृष्ण हूँ। इसलिए वहाँ से लौट रहे थे तो प्रयाग में हमारे रूप गोस्वामी के साथ उनकी भेंट हुई। बहुत उस समय उनकी उम्र अभी बहुत छोटी थी, नौ युवक थे। महाप्रभु भी जी उस समय कम से कम तो 40 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र थी, इनकी उम्र होगी अभी 25, 26, 27 ऐसी उनकी उम्र होगी। दोनों प्रयाग में मिले, महाप्रभु उनको देख करके बड़े आश्चर्य व्यतीत हुए। तुम कैसे संसार रूपी कूप से निकल करके आया? संसार से निकलना बड़ा भारी कठिन है। माता की ममता, स्त्री का स्नेह, पुत्र का वात्सल्य और संसार की चीजों के प्रति आसक्ति छोड़ करके, मैं और मेरा छोड़ करके भगवान का भजन करना बड़ा भारी कठिन है, विशेष करके संसारी लोगों के। सब छोड़ करके तुम आए, ठीक है। उनको कुछ उपदेश दे रहे हैं, आज उन्हीं उपदेशों में से थोड़ा सा आप लोगों के सामने दिया। संसार में भक्ति, अधिकांश लोग विशेष करके हम हिंदुओं में से अधिकांश लोग करते हैं, विशेष करके ब्रज का निकट है ये, यहाँ के लोग भी और भी लोग किसी न किसी रूप में भगवान का नाम लेते हैं। जो शराब ही पीते हैं वो भी कृष्ण कृष्ण कह लेते हैं, जो मदिरा मांस खाते हैं वो भी लोग ही कर लेते हैं। बंगाल में काली पूजा करने वाले, मांस मछली खाने वाले, वो लोग भी कृष्ण कृष्ण कह लेते हैं। वो लोग समझते हैं कि हम ठीक हैं, हमारा भजन ठीक से हो रहा है। इधर में भी हम लोग भक्ति के शुद्ध स्वरूप को न जान करके अपने मनमाने ढंग से भगवान का भजन करते हैं, उसको भी भक्ति समझ लेते हैं। उनसे कुछ अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, कुछ प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ तक कि चुटकी बजाते हुए स्वर्ग जैसा सुख या स्वर्ग भी मिल सकता है, संसार से छुटकारा होकर के मुक्ति भी मिल सकती है, किंतु ब्रज का प्रेम नहीं मिलेगा, ये असंभव है। कोटि कोटि जन्मों में यदि कोई संकीर्तन करता है जो सर्वोच्च चीज है साधनों में, श्रवण करता है, भक्ति करता है, नवध्या भक्ति, तो भी ब्रज का प्रेम ये नहीं मिल सकता। इसके लिए कुछ नियम हैं। आपको यदि वकील बनना है तो मनमाने तरह से कानून को पढ़ने से नहीं होगा, लॉ कॉलेज में जाना पड़ेगा। डिग्री लेने पर भी आपको कहीं ना कहीं किसी के जूनियर वकील के रूप में होना होगा, जूनियर के रूप में कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके बाद में तब फिर कहीं आप उचित रूप में आप कानून होकर के अपना काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए उचित शिक्षा की जरूरत है, इसलिए भक्ति भी उपयुक्त और अनुपयुक्त दो पद्धति से होती है, दो प्रकार के साधन। एक मनमाने ढंग से भगवान का नाम लेते हैं, जैसा तैसा चलते हैं,
जो स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है उसको भी भक्ति समझ लेते हैं। गाय को पाल लिया, उसका दूध 10 मन हो रहा है, उसमें से 5 किलो चला गया ठाकुर जी के लिए, बाकी अपना काम में लग गया, इसको भी भक्ति समझेंगे। कोई फूल का बिजनेस कर रहा है, उसमें कुछ फूल ठाकुर जी के लिए चले गए, बाकी अपने काम में लगे, इसको भी भक्ति समझ लेंगे। भक्ति का स्वरूप नहीं जानने से ये गड़बड़ियां होंगी। स्वरूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके, भक्ति का शुद्ध स्वरूप किसको भक्ति कहते हैं, कैसे भक्ति करने से हम ब्रज का प्रेम पा सकते हैं, कैसे हमारा यथार्थ कल्याण हो सकता है, इसके लिए शिक्षा दी। इन शिक्षाओं का जगत में अभाव है। आज स्वरूपता भक्ति न करके संग सिद्धा भक्ति और आरोह सिद्धा भक्ति, कर्म मिश्रा ज्ञान भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, जो भक्ति स्वरूपता नहीं है, आजकल लोग उसी को भक्ति समझ रहे हैं और उसे वंचित हो जाते हैं। यदि ये सब ग्रंथ नहीं होते, चैतन्य चरितामृत इत्यादि शुद्ध भक्ति के ग्रंथ नहीं होते, श्रीमद् भागवत नहीं होता, उसको समझाने वाले नहीं होते, तो शुद्ध भक्ति से हम लोग वंचित हो जाएंगे। वेश ऊपर से हमने धारण कर लिया है साधु का, लाल कपड़ा या सफेद तिलक धारण करते हैं, गले में माला है, सब कुछ है, भगवान का नाम भी हम 16 माला जप लेते हैं, किंतु उचित रूप से अपराधों को छोड़कर शुद्ध संबंध ज्ञान से युक्त होकर जब तक भजन नहीं करेंगे, ब्रज का भजन नहीं, वो भी कोई ब्रजवासी, ब्रजवासी माने क्या, ब्रज के भाव से भरा हुआ, ब्रज में रहने वाले ही ब्रजवासी नहीं है, पंडे टंडे लोग जितने हैं वो सब ब्रजवासी नहीं है। नंद जसोदा के भावों को लेकर, जसोदा मैया के भावों को लेकर, गोपियों का भाव का लेकर के जो भजन करते हैं, कृष्ण से वैसा संबंध रख करके, वो ब्रजवासी साधारण लोग नहीं। ऐसे भक्तों के जो भक्ति तत्व को जानते हैं, खुद भजन करते हैं, ऐसे लोगों के मुख से भागवत और चैतन्य चरितामृत इत्यादि सुन करके हम शुद्ध भक्ति की तरफ में बढ़ें, अन्यथा हम अपने उद्देश्य से भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी जी जब मिले हमारे चैतन्य महाप्रभु से, तो उस समय में महाप्रभु जी उनको कह रहे हैं, सुनरू भक्ति रसे रलखान, सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाएगा, मैं भक्ति का स्वरूप, भक्ति रस का स्वरूप, भक्ति तत्व का विचार, यह सब मैं तुमको बतला रहा हूं, तुम इसको अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुन करके इसका अनुसरण करना। मैं पूरे रूप में नहीं बतला सकता, वेद इतना बड़ा ग्रंथ उसमें नहीं बतलाया जा सका, श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का सार है, गीता भी समस्त उपनिषदों का सार है, किंतु श्रीमद् भागवत क्या है, निगम कल्प तरोर गलित अंग फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संगीतम, उपनिषदों का सार गीता है, और श्रीमद् भागवत क्या है, समस्त वेद उपनिषद शास्त्र जितने हैं सबका सार रस है श्रीमद् भागवत। इसलिए गीता से भी, गीता प्रारंभिक पुस्तक है धर्म राज्य की, भक्ति की, और श्रीमद् भागवत अंतिम उसका ग्रंथ है, उसका विचार समझना, गीता के उपदेश तक कुछ समझ में आ जाएगा, भागवत का विचार समझना बड़ा भारी कठिन है, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ के द्वारा उसको समझा जा सकता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, ये तुमको मैं थोड़ा सा सूत्र के रूप में बतला रहा हूं, जिसे तुम एक महासमुद्र है प्रेम का, उसमें एक बूंद चखो, यदि अमृत का पारावार समुद्र हो, उसमें एक बूंद चखेंगे तो क्या होगा, जैसे बच्चों को आज कोका कोला कोई चीज है ना, दे देते हैं, अब वो दूध नहीं खाएगा, वो दूध नहीं लेगा, दूध में ऐसा टेस्ट उसको नहीं मालूम पड़ता, वो एक तरह से विष है, कोका कोला, दूध अमृत है, विशेष करके मैया का दूध, इसलिए गाय भी वैसे ही माँ है, उसका दूध अमृत है, किंतु लोगों को अच्छा नहीं लगता, रुचकर नहीं लगता। तो हम लोग यदि उसका अमृत का एक बूंद भी मिल जाए, यदि भक्ति की एक बूंद भी हम चख लें, उससे आप भ्रष्ट जीवन भर नहीं हो सकते। रूप गोस्वामी इतनी जैसे बहुत जल्दी कैसे बढ़ गए, महाप्रभु जी ने उनको चखाया और उन्होंने सारे जगत को चखाने की चेष्टा की। बतला रही है, देखो भक्ति को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो तुम है कौन, तुम भक्ति करने वाला है कौन, तुम्हारा स्वरूप क्या है। कहते हैं हमारा स्वरूप जीवों का स्वरूप केशाग्रसत भागस्य श्रद्धा कल्पित, हमारा केश एक, उसके अग्रभाग को 100 भाग कीजिए और फिर एक भाग को फिर उसमें से एक भाग को फिर 100 भाग कीजिए, यह संभव पर नहीं है। उससे भी छोटा क्षुद्र जीव का स्वरूप है, यह शरीर में कहां है पता नहीं चलता, किंतु सब जगह है, कहीं भी चीटी काटो वो सब जगह में मालूम, किंतु है कहीं एक जगह में। जैसे यहां पर कोई कस्तूरी रख दे या धूप जला दे, चारों तरफ में उसका पहुंच जाएगा सुगंध। सूर्य जैसे एक दिशा में एक जगह स्थिर है और सारे विश्व को प्रभाव विस्तार कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, ऐसे एक जगह में है, बहुत छोटा क्षुद्र है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जगत में जिसके द्वारा समझाया जा सके। ऐसे छोटा हमारा स्वरूप है, किंतु है भगवान का अंश। ये अंश दो प्रकार के हैं, एक बद्ध और एक मुक्त। बद्ध जीव जो हैं ऐसे कोटि कोटि, ये वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में, नित्य धाम में उनकी सेवा करते हैं विविध प्रकार से, कोई पत्नी के रूप में, कोई प्रिया के रूप में, प्रियतमा के रूप में, कोई मैया के रूप में, कोई बाप के रूप में, कोई सेवक के रूप में, अधिकांश लोग सेवक रूप में, उसके बाद में सखा रूप में, उसके बाद में मैया बाप के रूप में, और बिरले लोग जो हैं कोटि स्वपि, कोटि कोटि करोड़ों में से कोई एक उस रूप में। तो ये मुक्त जीव है, उन्होंने देखा नहीं ये जगत कैसा है, इस जगत में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है, दुख को ही सुख मान रहे हैं। जैसे कोई पियक्कड़ मदिरापान करने के बाद में नाली में गिरा हुआ भी अपने को और समझता है कि मैं शहंशाह हूं, ऐसे हम लोगों की स्थिति, हमको ये दुख दुखी नहीं मालूम पड़ रहा, ऐसे हम बेहोशी की एक तरह से हालत में हैं और समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो हम लोग हैं, जो कि अनादि काल से भगवान को भूले हुए इस जगत में पड़े हुए हैं। इसमें भी तरह तरह के स्टेज के हैं, कोई भगवान से एकदम भूल करके विमुख है, विषयों में गधे और कुकर जैसे, सुकर जैसे एकदम विषयों में मिला जाए। मनुष्य में भी कुछ ऐसे हैं जो कुकर और सुकर की भांति भगवान से कोई भी संबंध नहीं, परमात्मा से बस इन्हीं कामों में लगे, ये मनुष्य रूप पढ़ने पर भी जानवर है। और जानवरों में भी कैसे हैं, गधे, गोखर, गोखर माने क्या, खर माने गधे, ये गधे के समान है। कुछ और हैं वो कैसे हैं, कुछ कुछ भगवान की तरफ उन्मुख हैं, उनको भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, किसी न किसी रूप में देवता के रूप में भी भगवान का पूजन करते हैं। उनसे भी कुछ श्रेष्ठ हैं जो शुद्ध गुरु पद आश्रय करके कुछ साधन भजन करने की चेष्टा करते हैं। उनसे भी कोई श्रेष्ठ हैं गुरु से, शुद्ध गुरु से हरिनाम दीक्षा लेकर के और कृष्ण से संबंध कुछ लगाया, क्या वो हमारे प्रभु हैं, मैं उनका नित्य दास। इनसे भी जो ऊंचे हैं, मेरे कृष्ण सखा हैं, उससे भी ऊपर वाले, कृष्ण हमारा बेटा है, उससे भी और ऊपर रुक्मिणी इत्यादि के भाव, क्या हमारे पति हैं, और उनसे भी ऊपर गोपियों के भाव, इस तरह से उनसे संबंध रख करके दिन रात भजन करते। इनमें से भी कोई अभी साधन भजन में लगे हुए हैं, कोई साधन भजन में जिसको निष्ठा हो गई है, अब वो इधर से उधर नहीं हो सकते लाख दुख कष्ट होने पर, उनसे भी कुछ ऊपर उठे हुए हैं जिनको साधनों में श्रवण कीर्तन इत्यादि में उनको कुछ रुचि उत्पन्न हो गई है। यदि तुम उनको घर से भी निकाल दो वो भजन नहीं छोड़ेंगे या छोड़ेंगे, लाख उपाय करो। जैसे मीराबाई का पति उसके घर के लोग उसको सताते हुए उसको हरिभजन से चुप करने की चेष्टा की किंतु किसी की बात नहीं, खंड खंड यदि जाए होई जाए देह प्राण, खंड खंड बोटी भी कर दे प्रहलाद महाराज की भांति कर दे हरिदास ठाकुर व्यास भजन ऐसे निष्ठा। इससे भी ऊपर कोई जिसकी भगवत भक्ति जिसके हृदय में अवतरित हो गई है, प्रकाशित हो गई है शुद्ध सत्व, इससे भी ऊपर में है या प्रेम का आभास उनके हृदय में, यहां तक जगत की स्थिति, इसके बाद में इस जगत से ऊपर कोई स्थिति नहीं। महाप्रभु उसी चीज को धीरे धीरे इनको बतला करके कह रहे हैं सूत्र के रूप में। हमारा स्वरूप तीन में है, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव कभी भी जीव से अतिरिक्त भगवान नहीं हो सकता, जीव जीव ही रहेगा, शुद्ध हो जाएगा, भगवान की शुद्ध सेवा करेगा यहीं पर। कुछ लोग कहते हैं कि जीव ही परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा एक ही, यह बात गलत है। परमात्मा एकमात्र कृष्ण है, इस चीज को समझा जाए। कुछ लोग देवता देवियों को भी भजन करके सुख चाहते हैं, उनको सुख मिलेगा बस थोड़ा, और फिर सुख मिलने के बाद में फिर उनको दुख होगा, यहां तक ईश्वर की प्राप्ति होकर के भी जगत से इस जगत में आना होगा। कुछ लोग भजन करके नारायण की भी सेवा को प्राप्त कर लेते हैं, ये भी कम नहीं है, नारायण की सेवा को नारद की भांति या और लोगों की भांति पाना ये कम नहीं है, किंतु ब्रज भक्ति और ब्रज जो प्रेम है उसकी तुलना में बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। इसलिए हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने, गुरुओं ने इस चीज का निर्णय किया, विशेष करके श्रीमद् भागवत में, जो प्रेम कृष्ण को भी वशीभूत कर ले वो गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, महाप्रभु उसी के लिए दिशा निर्देश कर रहे हैं। इसलिए हमारा स्वरूप तो हुआ ये, मैं बहुत ही क्षुद्र चीन में सच्चिदानंद में सत्व हूं, किंतु अपने प्रिय कृष्ण को भूलकर हम इस संसार में नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। ऐसा मत समझिए धन होने से ही हम सुखी हो जाएंगे। कुछ दिन पहले ईरान का सम्राट विश्व में सबसे धनी था, क्योंकि वहां पर तेल बिक्री होती है, विश्व में नंबर वन, किंतु उसको हो गया कैंसर, और इसके बाद में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ, परिवार वालों और देश वालों से तंग आकर के अमेरिका चला गया, वहां पर अस्पतालों में एक एक बूंद पानी के लिए मरा, अपने देश को लौटना चाहा, देश में भी नहीं लौट सका, कितनी दुर्गति। नेपोलियन बोनापार्ट का आप जानते हैं, हिटलर की कैसी दुर्गति हुई आप जानते हैं, हमारे हिरण्यकश्यपु और रावण की क्या दुर्गति हो गई। इसलिए धन होना ही सुखी नहीं है, उसका जीवन कैसा है सुखी है इस पर विचार हम लोग करते हैं। इसलिए महा कृष्ण है आराध्य सबके, देवताओं के भजन करने से कुछ लाभ थोड़ा सा हो सकता है किंतु अधिक नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष सबको छोड़ करके कृष्ण को आराध्य मानते हैं, जीव उनका आराध्य है। दूसरी बात ये, भगवान को खुश करने के लिए जितने भी प्रकार के पथ हैं, हम लोग अभी जिसमें हैं ये कर्म मार्ग है, कर्म अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करने से अच्छी कुछ गति होगी, किंतु फिर भी आपको दुख भोगना पड़ेगा माया से निकलने से, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी किंतु ये भी ठीक नहीं, मुक्ति तो पत्थर की भी है, पत्थर को टुकड़ा को काटो तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा ना, पत्थर को दुख नहीं होगा क्योंकि निर्जीव है, उसको काटो पीटो पीस दो तो भी नहीं, उसको नहीं होगा। इसलिए मुक्ति में भी सुख नहीं है, एकमात्र भक्ति से ही भगवान को पाया जाता है। और भक्ति क्या है इसी को ये बतला रहे हैं। जगत में बहुत प्रकार के जीव हैं, एक जड़ है, एक स्थावर है, एक जंगम है, पेड़ पौधे ये सब जंगम है, स्थावर है, जो चलने वाले हैं चींटी से लेकर के हाथी इत्यादि, मनुष्य जीव देवता गंधर्व ये चलने वाले हैं, और स्थावर चल नहीं सकते। पेड़ों में भी जान और आत्मा है, छोटी छोटी घासों में भी है, ये भी अपने कर्म से भगवान को भूल करके कुछ ऐसे अपराध जिनके हुए हैं जो ये सब बने हुए हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग कर रहे हैं। उसमें मनुष्य जाति बहुत कम है, बहुत कम है। पशुओं की तुलना में, मच्छरों की तुलना में मनुष्य की कितनी गिनती है, चीटियां कितनी भरी पड़ी हैं। इस तरह से मनुष्य की संख्या बहुत कम है, और उनमें भी म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध भगवान को नहीं मानने वाले, और जो भगवान